राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 7 जुलाई 1993 को प्रातः लगभग 8:30 बजे भीनाशर में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण
मनुष्य जन्म की सफलता अपने कल्याण करने में है। अच्छा घर बना लिया, धन इकट्ठा कर लिया, आराम से रहने लगे, इसमें मनुष्य जन्म की सफलता नहीं है। ऐसे अनुकूलता में तो पशु पक्षी भी बहुत रहते हैं। मनुष्य जन्म का ध्येय है सर्वोच्च पद प्राप्त करना, क्यों ये शरीर उत्तम है तो उत्तम से उत्तम की प्राप्ति करना मनुष्य का ध्येय है, ये लक्ष्य है। तो वो लक्ष्य होने पर परमात्मा की प्राप्ति सुगम होती है। मैं बहुत बार कहता हूं कि परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, सुगम है। तो लोग कहते हैं सुगम है तो प्राप्ति तो नहीं होती, क्या बात है। तो प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए कहना है, प्राप्ति नहीं चाहते उनके लिए कहना है ही नहीं। उनके लिए सुगम कठिन क्या कहा जाए, प्राप्ति करना नहीं है। जिसकी ऐसी लालसा है, जोरदार उठकर अभिलाषा है, उस अभिलाषा वाले के लिए परमात्मा में प्राप्ति कठिन नहीं है। कठिन है तो असली लालसा की कठिनता है। असली लालसा जागृत नहीं होती, मेरा कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाऊं, भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, ऐसी लालसा है वो कठिन है। परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है। लोग भोगों की इच्छा और संग्रह की इच्छा का त्याग करते नहीं और कहते हैं सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो कैसे हो जाए। भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, गीता ने साफ कहा, भोग भोगना और संग्रह करना ईश्वरीय। तो भोगों के भोगने में रुचि है और पदार्थों के संग्रह करना, संचय करना, इसमें जिसकी रुचि है उसकी परमात्मा की प्राप्ति दूर रही। परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, ये भाव भी उनका नहीं बनता। थोड़ी सी प्रतिकूलता भी सह नहीं सकते, क्यों अनुकूलता की इच्छा है। थोड़ा भी अपमान नहीं सह सकते, क्योंकि सम्मान की इच्छा है। थोड़ा भी अपयश सहा नहीं जाता, क्योंकि मान बढ़ाई की प्रशंसा की लालसा है भीतर, तो सांसारिक पदार्थों के प्राप्त में न प्राप्त में जो हर्ष और शोक होता है, सुख और दुख होता है, तो इससे ऊंची स्थिति प्राप्त करने का वो अधिकारी नहीं है। कहते अधिकारी नहीं तो हम क्यों आए हैं यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कोई धन मिलता है, पूंजी मिलती है, वाह वाह मिलती है, आदर ज्यादा मिलता है, लोगों में प्रशंसा होती है, हम तो केवल परमात्मा के लिए आए हैं। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए आए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब एक बात कहता हूं, उसमें आपके जितनी लालसा है उससे लाभ ज्यादा हुआ है, मैं ये मानता हूं। अपनी लालसा की जिज्ञासा की तरफ देखा जाए तो सत्संग से लाभ ज्यादा होता है। हमारी इतनी उत्कट अभिलाषा नहीं है, लाभ होता है उससे ज्यादा, परंतु जब तक अपनी अभिलाषा की कमी है, ये नहीं खटकती है, तब तक उत्कट अभिलाषा कर नहीं सकते आप। वो उत्कट अभिलाषा के बिना लाभ दिखता नहीं। बहुत सी चीजें उनमें लाभ नहीं दिखता, जैसे किसी के चेचक की बीमारी हो जाए, माता निकल जाए और रो रो में फुंसियां हो जाए, फोड़े हो जाए, ऐसे होने पर 10-15-20 फोड़े कम हो गए, कम हो गए तो क्या पता लगे, और 10-20 और निकल जाए तो क्या पता लगे। सब शरीर में पीड़ा है, सब चमड़ी उधर रही है, दुख हो रहा है, ऐसे संसार की अनेक तरह की इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं में कोई इच्छा छूट गई तो क्या पता लगे, कोई इच्छा पूरी हो गई तो क्या पता लगे। साफ शरीर हो उसमें एक फुंसी भी हो जाती है तो पीड़ होती है, और चाहते हैं कि पीड़ा दूर हो जाए। ऐसे परमात्म तत्व की प्राप्ति में किंचित मात्र भी कमी है वो न स्वभाव है, तब उसको प्राप्ति हो जाती है, पर उनको हम सह लेते हैं। हमने दुरुपयोग किया है, सहनी चाहिए प्रतिकूलता और सह लेते हैं संसार का दुख, सह लेते हैं परवश होकर, सह लेते हैं जबरन, सह लेते हैं जिसका उपाय नहीं होता तो क्या करे, रोए रो सह लेंगे। आप परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए अगर जोर से लग जाए और उस प्राप्ति में देरी हो, वो सही न जाए, तब काम होता है। हमारे तो मान आदर सत्कार भी कम होता है तो सहा नहीं जाता। सत्संग में जाने वाले भाई बहनों की बात हमने देखी है कि वहां अगर आदर नहीं होता तो जाने का मन नहीं करता, वाह वाह नहीं हो तो जाने का मन नहीं करता। आदर ज्यादा हो जाए, मेहमान हो जाए तो हम जाते, बड़ी सुगमता से रुचि हो जाती है, और आदर सत्कार नहीं हो तो कहते क्या है, जाए तो क्या, न जाओ तो क्या है। अब ऐसी जब लालसा है तो कैसा लाभ होगा, थोड़ी सी प्रतिकूलता होती है तो नहीं जाती, वर्षा आएगी, हवा आएगी जोरदार, थोड़ी गर्मी ज्यादा हो गई, जहां शरीर के कुछ तकलीफ हुए वहां ये छूट जाता है। तो दोनों चीजों को तोल करके देखा जाए, सत्संग के लिए हम कितनी प्रतिकूलता सह सकते हैं, और सांसारिक भोगों की प्राप्ति में प्रतिकूलता कितनी सह सकते हैं। आप स्वयं हरेक भाई बहन असला लगावे और परीक्षा करके देखे अपने आप को, तो अनुकूलता न मिलने से जो दुख होता है वो दुख क्या सत्संग न मिलने से होता है? कभी होता है मतलब सत्संग न मिलने से बड़ा दुख होता है? तो प्रतिकूलताओं को लेकर के सत्संग में जाते हो तो कितनी दूर तक जाते हो? सत्संग में एक अटकल लगाओ, इस सत्संग के समय में अगर वहां रुपया दो रुपया पैदा होता हो तो ये भाइयों को पूछा जाए, दो रुपये पैदा होते अभी सत्संग के समय बाद नहीं होगा तो आप दो रुपया छोड़ते हो सत्संग छोड़ते हो? कभी दो रुपया छोड़ देते हो सत्संग करते हैं? अच्छा दस रुपये मिलते हो तो दस रुपये छोड़ोगे सत्संग करोगे? दस रुपये कैसे छोड़ा जाए? तो दस रुपये में सत्संग आपके नहीं है, दस रुपये से कम कीमती है, क्योंकि कीमती है कीमती जो आदमी लेता है। ऐसे सौ रुपये कह दे इस घटना में अभी सौ रुपये मिलता है, फिर ये नहीं मिला कौड़ी एक भी, कहते सत्संग कल ही कर रहे ये तो नहीं। कितने का आदमी है जो सौ रुपयों की कीर्तन सत्संग करते हैं? सत्संग में आप दाम कितना खर्च कर सकते हो ऐसी परीक्षा हो तो आपको पता लगे कि सत्संग को कितनी बढ़िया समझते हैं। कहते महाराज सत्संग तो रोजिना करते हैं, सौ रुपये तो आज ही मिलते हैं, आज सौ रुपये मिले और मर गए तो सौ रुपयों से क्या फायदा निकला? अरब खरबलों द्रव्य है और उदय अस्तलों राज, तो जो तुलसी जो निज मरण है तो आवे कई काल। अरबों खरबों रुपया हो उदय अस्त से राज्य हो पर निज मरने में क्या काम आवेगा? और सत्संग की बात एक भी समझ में आ जाए तो उससे कितना लाभ होता है? बड़ा भारी लाभ होता है। एक कथा मैंने सुनी है, डाकुओं का दल था, वो वंश परंपरा है डाका डालना चोरी करना लूटपाट करना, ये उनका स्वभाव और सिद्धांत बना हुआ था। तो वे पांच सात लड़के थे, बाप मरने लगा तो कहा कि पिताजी आपके क्या मन में बात है बताओ? तो कि अंतिम बात बताता हूं इसको धारण करना। कहते क्या? कि जहां सत्संग होता हो मंदिर आदि को वो मत जाना, वहां सुनना मत, सत्संग सुने बुद्धि बिगड़ जाती है, जाना नहीं, उनसे बुद्धि बिगड़ जाए, क्यों चोरी करना डाका डालना छूट जाए। आप जानते हो ये क्या बात है? ये तो बात ऐसी नहीं, ऐसी बात होती है, हमने सत्संगियों की बात देखी है, हमारे सामने ऐसी बात बीती है। सत्संग करने वाले छोरों को सत्संग में जाने नहीं देते। कहते क्यों नहीं जाने देते? कि इनकी खत्ती बुद्धि है, कोई लाग जाएगी तो हम कैसे व्यापार से कैसे काम करेंगे, इस वास्ते इन छोरों को नहीं जाने देना। मेरे सामने बीती हुई बात बताता हूं, कोई कल्पना नहीं है। तो सत्संग तो हम करेंगे जो तरह पक्के हो गए, एक बार नहीं लगे सत्संग की ऐसे पक्के हो जाएंगे, ये कच्ची बुद्धि वाला छोरा है। तो पक बुद्धि पका करके फिर सत्संग में जाने की, सत्संग लग न जाए एक भी बार। अब ऐसी तैयारी से सत्संग में जाते हो तो क्या लाभ हो जाएगा? सत्संग करने वाले की बात है ये, मैं कहता हूं बीती हुई बात, हमारे सामने बात आई हुई। तो बड़े आदमी बूढ़े करते सत्संग करना। इन माइयों में ऐसी बात मैंने सुनी है, तुम छोरी हो, अब बहू हो, बेटी हो, छोटी अवस्था है, सत्संग किया करो, सत्संग में हम जाएंगे बूढ़े बूढ़े वो, और वो कहते हैं वो जाते नहीं सत्संग में, बात तो कह देते हैं, तुम्हारी अब सत्संग की कोई अवस्था है, अवस्था बूढ़ी हो जाओ तब जाओ, बूढ़ी क्या करेगी वो। वृद्धावस्था तक जो खराब आदत पड़ी है वो जल्दी छूटेगी नहीं, बालक अवस्था में तो सुधार बहुत जल्दी होता है, अवस्था ज्यादा हो जाए पर सुधार होना कठिन होता है। अरे छोड़ा तुम क्या सत्संग करते हो, ये सत्संग वाली अवस्था है, अवस्था बाहर निर्बंधा करो, संसार का सुख लो, अभी क्या है, फिर बूढ़े हो जाओ तो सत्संग करना, ऐसी बात कहते हैं। और वे बूढ़े सत्संग करते नहीं, और सत्संग का रस आ गया करते हुए तो बालपन से लगाते हैं, बच्चों को साथ में लाते हैं और उनसे सत्संग की रुचि बढ़ती है, ऐसी बातें हमने सुनी है। श्री जयदयाल जी जिन्होंने गीता प्रेस खोला है, कल्याण का प्रचार किया है, पुस्तकों का प्रचार किया है, सत्संग का प्रचार किया है, उन्होंने एक बात बताई थी मेरे को याद है, इनका गांव तो है चूरू, ननिहाल था रतनगढ़, नारमल जी की बहन थी वो शिवाबाई, उसके बेटा है वो, तो रतनगढ़ में रहते थे, तो शेर जी कहते हैं मैं माँ के साथ में था तो वहां पर भक्तनाथ जी और अच्छे संत थे, शेर जी कड़े बड़े अच्छे पुरुष थे, वहां सत्संग में मेरे माँ जी जाया करते और पीर में रह वहां संत में तो वो जावी स्त्रियां जाती थी, तो हम भी साथ में जाते थे, तो जाते थे क्या वहां पर झाड़ थे, बोरिया था, तो बोलिया को खाते बोलिया कर आ जाते, चलो चलो माँ चलो, क्योंकि हमारा मतलब तो हो गया। शेठ जी कही हुई बात कहता हूँ, बीती हुई बात, अब चलो, अरे ठहर जा, संत कोई देख दे, जाओ जाओ भाई, बालक कह रहा है जाओ अब जाओ अब जाओ, तो फिर धमका दी माँ किसी लोग साथ नहीं ले जाएंगे, तुम ऐसे तंग कर रहा है वह, तो चुप हो जाते। तो माता के साथ में जा जा करके स्वभाव पड़ा है, ऐसा कई भाई बहन मेरे को मिले, हम दादी जी के साथ जाया करते, सत्संग सुना करते, कोई माँ के साथ, कोई दादी माँ के साथ, कोई चाची, कोई ताई, इनके साथ में जाते, बालक माँ के साथ रहता ही है, माँ के रहना साथ में स्वभाव है उनका, तो माया माता जाती थी आप भी जाते साथ में, ऐसे सत्संग का रस उनको लग जाता है। तो अच्छे अच्छे संस्कार सत्संग से पढ़ते हैं तो माताएं जहां अच्छी होती है उनके घर के अच्छे होते हैं, ये बात देखने में आती है। अच्छे अच्छे संत हुए हैं उनका आप विचार करो, खबर करो, तो मिलेगा कि माताएं बड़ी अच्छी हुई है। माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, माँ पर पूत, माँ के स्वभाव बालक पर ज्यादा आते हैं, पेट में रहता है, गोदी में रहता है, दूध पीता है, उनका बोलना चलना सब माता सिखाती है, सबसे पहला गुरु माँ माना गया है, सबसे पहला गुरु माँ है, माँ के पास सीखते हैं अभी, तो माँ का असर बहुत पड़ता है बालक पर, माँ के स्वभाव का असर पड़ता है। आपके बहन बेटी बहू गर्भवती हो तो उनको सत्संग सुनाओ, भगवान के चित्र दिखाओ, चरित्र सुनाओ, संतों के चरित्र सुनाओ, ऐसे उस संस्कार पढ़ेंगे तो बालक बड़े भारी संत हो जाएंगे। माताएं चाहे तो बालकों को बड़ा महात्मा बना सकती है, क्योंकि हाथ में बच्चे हैं और माँ की बात वे मानते हैं। एक बात याद आ कि मैं भिक्षा को गया था तो माँ जी ने कहा कि मैं भिक्षा लाती वहां ठहरू, मैं ठहर गया। छोटी सी बालिका ही, क्योंकि बाबा जी आप कान कसते हो ना भाई, मैं नहीं, आप कान काट रहे हो, मेरी माँ कहती है। अब माँ की बात मान, मेरी थोड़ी मान, माँ कहती है। तो बच्चों के ये चित्त में जस जाती है कि आप कान काटते हो, वही कान में नहीं काटता, मैं कानों काट के क्या करूंगा बताओ, कान मेरे क्या काम आवेंगे, नहीं कान काटने, बाबा जी कान काटता, पैदे से डरा इधर सब शत्र में जब ही नहीं बस। और बात सच्ची है, कान काटते हैं हम, कानों में बातें सुनाते हैं तो कान कट जाते हो, संसार की बातों में कम सुनते हैं, जो ठीक सुने उनके तो असर पड़ता ही है, तो कान काटने बात तो ठीक है, पर बात में समझेगी कान काट देंगे, ये नहीं समझते कान काट बाबा जी क्या करेंगे, तो कहीं छोरा डरते भाग जाए। एक गांव में हम जा रहे तो उसी बारे शेर खेलते ओए ओए करके भागे जोर से, कि बाबा जी ले जाएगा झोली में घाल देंगे, अब झोली में बाबा जी तो बोझ ले क्या करेगा बताओ, झोली में घाल देंगे, ऐसे टावलों को डरा दे तो सत्संग करे ही नहीं, और छोटे बालक सत्संग में लग जाए दीखा देर की बात। मैं भिक्षा हो गया, वो छोड़ा तो जवान हो गया, उसी प्रकार की भी हो गए, तुरंत पता नहीं है, बहुत वर्षों की बात है, मेरे गोली पूरी हाथ पकड़ कर रहा, चलो मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। तो इस तरह से बालकों के संस्कार होते हैं, भी डरते नहीं। अब मैं उस बच्चे को जानता ही नहीं, वो कहता चलो हमारे घर चलो। तो बच्चों में संस्कार होते हैं, वो डरते नहीं है, नहीं तो डर जाए छोड़ा तो, अरे मेरे को पकड़ ले जाओ चलो। तो माता पिता के स्वभाव होता है, उनका बालकों पर स्वभाव पड़ता है, तो बच्चों का स्वभाव पड़ेगा वैसे आगे सृष्टि बनेगी। अगर ये आवाज जो सभ्य भाई लोग हैं, हमारी बहना माताएं हैं, ये सब जैसी बनी है, जैसा संग मिला है वैसा रंग लगा है, तो अब बालकों को जैसा रंग लगेगा वैसा स्वभाव बनेगा। तो उनको सत्संग में जाना, भजन सत्र कराना, कीर्तन करना, करना सभी काम। मैंने बालकों को देखा है जिनके पिता चाचा वो करते हैं संध्या, तो वो ही पानी लेकर ऐसे करते हैं, छोटे छोटे बच्चे वो अनुकरण करते हैं। बालकों में सीखने की एक स्वतः वृत्ति होती है, हर एक बात ये क्या है, ये क्या है, ये जिज्ञासा होती है, और सिखा दिया उन्हें तो बहुत सरलता से छोटे छोटे तुतली तुतली बाणी से गीता बोलते हैं, बड़े सुना लगे छोटा बालक बोलता हुआ, जो बालक कह सोचे जी माता सुने मोदी तो मन पितु और माता सुनते हैं, तो ऐसे बोलते हैं, तो उनके संग करे जैसा रंग चढ़ता है। बालक के ध्रुव जी प्रहलाद जी महाराज थे गर्भ में थे, तब ज्ञान ज्ञान सुनाया महाराज नारद जी ने, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख सोनक भीष्मदास ध्यान। तो प्रहलाद नारद, प्रहलाद जी का नाम पहला था, गुरु जी का नाम पीछा था। बात ऐसी हुई तो उनके पिता गए तपस्या करने के लिए, तो तपस्या करने के लिए गया तो वहां बड़ा विघ्न डाला, मारपीट करी, घसीटा, सब कुछ किया, नहीं छोड़ी उन्हें तपस्या, तो उसके कान में जाकर विष्णु 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 नाम सुनाया, वो सह नहीं सका, मान वो चला, तो भाग गए देवताओं को। तो उसने समझा अब घर मिल गया है भाई, अब तपस्या तो टूट ही गई है, फिर तपस्या करेंगे। घर पर गए और श्री ने पूछा कि इतने जल्दी कैसे आ गए आप, तो बहुत वर्षों को रहना था, किस तरह से बात हुई। तो बात करते थे वो विष्णु विष्णु नाम करते हुए गर्भाधान हुआ, बात करते करते, फिर वो तो गए तपस्या के लिए, पीछे इंद्र आया जो वो लूटपाट करके ले गया, कयाधु को पकड़ लिया, कयाधु माँ थी पूजनीय माता, कयाधु नाम था उसका। उस काया कयाधु को लेकर चले तो नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी कह रहे इस बेचारी अबला को क्यों ले जाता है, तो ये तो स्त्री है, ये तो सब तरह से दया का पात्र है। तू राजा इंद्र देवताओं का राजा होता हुआ एक बेचारी अबला को दुख दे रहा है कि महाराज अबला को दुख नहीं देता हूँ, इनका पाप अकेला हमारे पर विजय कर दिया, इनका छोरा जलने का तो हमारा दो हो जाएंगे तो क्या दशा होगी हमारी, इस वास्ते इसको ले जाऊंगा, उसे छोरा जलने को उसको मार दूंगा। नाथ जी ने कहा भाई नहीं तेरे को मारोगा तेरे को कुछ दुख नहीं देगा यार का। तो ये संतों की बात राक्षस भी मानते हैं, साधु भी मानते हैं, देवता मानते हैं, सब मानते हैं। तो नारद जी महाराज कहने से नो खुशी दस गई तो छोड़ दिया। तो नारद जी महाराज ने कुटिया में रखा कि बेटी तुम मौज से रहो, आनंद से, तुम्हारा कोई दुख नहीं है, बड़ा आश्वासन दिया। तो माँ को ही संतोष मिला, मन अपने बाप के घर बैठी हूँ जैसे आनंद से रही। और प्रहलाद वो लक्ष्य करके नारद जी महाराज अच्छी अच्छी बातें कहते, भगवान की बातें कहते, भगवान के चरित्र सुनाते, ऐसी बातें सुनाते। तो माता रहो नलेश नारद के उपदेश को, सो धार्यो ही अशेष गर्व माई ज्ञानी भयो। वो जो नारद का उपदेश वो लेश मात्री माँ को याद नहीं रहा, पर उनके मन में ऐसी बात हुई जो बड़ा भक्त हो गया, संत हो गया। तो बालक का असर महाराज सब उम्र में रहता है, तो माँ को उपदेश दिया बच्चे ने जाहिर कर दिया, बालक पर असर पड़ता है। गर्भवती बहना हो उनको बड़े आदर से रखो, प्रेम से रखो, उनके सामने भगवान के चरित्र रखो, भगवान के चित्र रखो, संत महात्माओं के चरित्र सुनाओ, रामायण सुनाओ, गीता सुनाओ, भागवत सुनाओ, जिनसे उस पर असर पड़ेगा भगवदन में। माता जने तो भगत जन के दाता के सूर, नहीं तो तूरे बांझ ही मती गमावे नूर। अपना योजन योगन खराब क्यों कर रही हो। संतों ने कहा है मातुर यौवन हारिना, माँ के जवानी को नष्ट करने कुठारा भाई, हम तो कौन बने, माँ की जवान अवस्था को हमने नष्ट किया, क्या काम किया, भजन नहीं किया तू माँ तो दुख दसी मास माता ने दुख दीनो, तेरे को काज कछु नहीं कीनो, ऐसा मैं हुआ। तो जो संत हुए हैं उन माताओं को धन्यवाद दिया है। एक भगवान बनाना आवे धन 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 वाली तुझे ऐसा शुद्ध जाया है, ऐसी बात आती है। तो माताओं की महिमा होती है उसमें, ऐसा पुत्र हो। सुमित्रा ने कहा है ना, पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुबर भगत जासु सुत होई। जिसका सुत रघुनाथ जी महाराज का भगत हो वो पुत्रवती है, मान बेटे की माँ है, वो बेटे की माँ की इज्जत होती है संसार में, बेटे की माँ है। तो पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुवर भगत दास सुत होई। लक्ष्मण जी ने देखा कि ये माँ मुंह में कहीं गलती कर देगी, बात सुनी ना स्त्री से के कहीं ने वनवास दे दिया, तो बात सुनी लक्ष्मण से तो चुप हो गई। लक्ष्मण देखा अनर्थ हो जाएगा, अब ये माँ कह देगी तुम मत जाओ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, पर बाप ही तो लक्ष्मण जी की माँ थी, कोई मामूल थोड़ी। बात सुनी ना इसलिए से के कहीं ने वनवास दे दिया, तो बात सुनी लक्ष्मण से तो चुप हो गई। लक्ष्मण देखा अनर्थ हो जाएगा, अब ये माँ कह देगी तुम मत जाओ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, पर बाप ही तो लक्ष्मण जी की माँ थी, कोई मामूल थोड़ी। उसने कहा रामम दशरथम दिव्य, राम है तो तुम्हारे दशरथ है, अरे माम विद्या जनका तो जनकराज पुत्री है वो मेरा स्वरूप है साक्षात, तो तुम्हारे माँ बाप सब साथ में, तेरी क्या चिंता है जा। अयोध्या आठवीं विद्धि गच्छता यशा सुखम यश रूप मौत से जाओ बेटा, धन्यवाद कर दिया, मेरा भी धन्यवाद है तो लक्ष्मण जैसा मेरे बेटा हूँ, भगवान का भक्त हो। ये माताओं के मन में था भाव, उनके दूध का भाव था, मेरा दूध पी करके फिर गधी का कुत्ते का दूध पिएगा, उनके घर में जाकर गर्भ में जलनेगा तो मेरा दूध क्या पिया, ऐसा माताओं के मन में भाव रहता था। इस वास्ते अपने लड़का लड़की को ऐसे उत्तम श्रेष्ठ बना दे जैसे पीछे धर्म लड़ा ही नहीं पड़े, तो ऐसी माताओं का असर बच्चों पर पड़ता है जिनका वैराग्य है त्याग है, उनके भीतर वैराग्य और त्याग तो बच्चों में स्वाभाविक आता है, वो माँ का असर आता है बालक पर, वो माँ से सीखते हैं, माँ का ही दूध पीते हैं, माँ के सामने देखते हैं सुनते हैं सीखते हैं, माँ सीखा होते सीखते हैं। तुम्हारी मातृबोली क्या है, मातृभाषा मानो माँ से कौन सी बात भला सीखी है, तो माँ का ऐसा असर होता है। तो वो जो पारमार्थिक इच्छा है जागृत होती है तो उसको लाभ होता है, हम कह बहुत जल्दी से परमात्मा प्राप्ति हो जाए, बहुत सुगमता से हो जाएगी। कोई पूछे लोग कराओ हम तुम कहो जैसे ही करें तो सुगमता से कैसे हो जाए जल्दी हो जाए। अब मेरे सुन करके बात कह लेते हैं, भीतर में लालसा तो है नहीं, असली असली लालसा हो तो लाभ होगा ही, मेरा तो बिल्कुल दृढ़ निश्वास विश्वास है कि सच्ची बात है। जो सच्चे हृदय से सुनते हैं उनके फर्क पड़ता है, कहा है लोगों ने तो हमारे बड़ा लाभ हुआ है। अब की एक बात कही कि हम सदा सुनते अपन इष्ट में साथ सुना तो हमें बहुत विशेष लाभ हुआ। अब किस समय में कौन सी बात लग जाए क्या पता है, अंतःकरण शुद्ध होता है सन्मुख होता है तो लग जाता है। जैसे वर्षा बरसती है समुद्र पर, परंतु वही स्वाति नक्षत्र में और सीप के मुख में पड़े तो मोती बन जाता है। संतप्ता इसी संत्य पैसो नामा भी नष्ट हुए थे, कहा है कि तपते हुए लोह पर अगर बूंद पड़े तो नाम निशानी मिट जाए सब हो जाता है। और सो भी बूंद अगर सर्प के मुख में बने तो जहर बन जाता है, केले के मुख में पड़े तो कपूर बन जाता है, सीप के मुख में पड़े तो मोती बन जाता है। तो एक बूंद गुण तीन ऐसे गुण अलग अलग होते हैं, जैसा जैसा पात्र होता है उसके अनुसार से उसका फल होता है। तो माताओं का अच्छा भाव होता है, बच्चे सन्मुख होते हैं उनके चाहना भीतर हो जाती है, भोले भाले पड़े में जो असर पड़ता है वो विशिष्ट पड़ता है, अंतःकरण निर्मल होता है, संस्कार के संसार के संस्कार कम पड़े हैं तो उनके अच्छा काम होता है। तो बहनों माताओं से कहना है सज्जनों से कहना है कि आप भी लगो लगो लगाओ। मुख्य बात ये थी कि हमारी उत्कट अभिलाषा हो तो परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, क्योंकि सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब व्यक्तियों में संपूर्ण अवस्थाओं में परमात्मा मौजूद है, तो मौजूद को प्राप्त करने में क्या कठिन हुआ है। परंतु लालसा नहीं हो तो बड़ी कठिन होती है, असली भीतर में लालसा नहीं है तो कैसे हो जाए प्राप्ति, भीतर में लालसा हो तो दुर्लभ चीज नहीं है। तो पहले जागृत करो लालसा को, हम सत्संग सुनते हैं अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ते हैं उधर से लालसा लगी है, परंतु खुद की तरफ नहीं देखते कि हमारे हृदय में इसके प्रति भाव कैसा है, लालसा कितनी है, हम कैसे अधिकारी हैं, क्या चाहते हैं, तब वो इसका पता लगे। अब संसार की चीज चाहते हो, भोग चाहते हो, संग्रह चाहते हो, कि भाई सत्संग से ज्यादा तो सब नहीं पड़ा, अब ज्यादा कैसे पड़ा, मन में तो वो भाग और भरी हुई है। एक दृष्टांत आता है कि एक नमक का पहाड़ था और एक था मिर्ची का पहाड़, तो इतना जब ढीला हो जाने वो कीड़ी के लिए जो पहाड़ी है, तो नमक के पहाड़ पर रहने वाली एक कीड़ी, एक मिर्ची के पार पहाड़ पर रहने वाली, तो मिर्ची वाली कीड़ी गई नमक वाली के पास, कहते यहाँ क्या करती हो, देखो कैसा खाद्य पदार्थ, अरे हमारे वहां चलो बहुत मीठा है, इनसे भी मीठा है, ये मीठ पे भी सही है, ये तो नमकीन है, मीठ है ही नहीं, बढ़िया घटिया क्या कहा जाए, तो ऐसे ही बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, तो चलो सास ले गई और पता देख कैसा मीठा है, तो दो चार बार तो बोली नहीं, देख कैसा मीठा है, देख सोचा, वो बोली कि मैं तेरे कहने से हाँ कर दू बात सच्ची कहूंगा, सच्ची बात कहे हाँ मैं हाँ क्या कर ले, क्योंकि मेरे को तो वैसे ही स्वाद आता है जैसा हमारे वहां पहाड़ पर है वैसे ही यहाँ पर आ रहा है, ये कोई बिल्डिंग सकता मैंने तो नहीं देखी। चीटी ने विचार किया कि मिश्री में नमक में अंतर होता है, ये कहते हैं वैसे ये क्या बात है, तो उसने देखा मुख में छोटी सी नमक की डली पकड़ी हुई थी, अब वो जहां जाओ वही वो स्वाद आ उसको, तो उसने कहा देख यह तो है जल्दी से निकाल दे, कि मैं साथ लाई हूँ खीर संचय करती है ना, इसको डर रहता कि छूट न जाए, वो छुड़ाई छुड़ाई देखा मैं तो मेरा मन लगी जो यूं हो गई ज्यादा मिठास लगता है ना, तो उसको ऊंची हो गया से कि सुन सुन चला गाड़ी कि चुप रहे हल्ला मत कर, यहाँ जो आनंद आ रहा है वो मैं कैसे सुनूं, तो जब तक मिश्री नहीं चखे तब तक मिश्री का स्वाद कैसे आवे, ऐसे सत्संग नहीं करने से भी क्या जाने सत्संग को समझ नहीं सकते। बहुत से लोग अपनी स्त्रियों को मना करते सत्संग मत जाओ, अब क्या जाओगे रोज सत्संग तो वही बात नहीं, सत्संग नहीं चोरी चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, कपट मत करो, सीधे सीधा सच्चा बोलो, राम राम करो, यही तो बात में सत्संग है और क्या सुनोगे, अरे सत्संग में यही बातें नहीं है, बहुत विलक्षण पुरुष बातें होती है, परंतु वो जानते नहीं, जिस विषय में प्रवेश नहीं किया उस विषय की भी बात क्या जाने, तो मना करते हैं, परंतु जाने लगे तो महाराज वो छोड़ते ही नहीं। बीकानेर में सत्संग हो रहा था तो एक लड़का माँ को लाता, माँ को ला सत्संग वैसा करके चला जाता, शायद मोटर में लगता किसी याद नहीं है, पर उसे कही है बात, तो माँ को पहुंचा देता और सत्संग उठने का समय आ जाता, आकर के माँ को ले जाता, तो माँ की भक्ति थी उसके मन में भी, मातृ सेवा करूं मैं, माँ का मन एक सत्संग पहुंचा दिया। एक दिन माँ ने कह दिया कि बेटा तू भी थोड़ा बैठ जा, मैं सुनती हूँ तू भी बैठ जा थोड़ा, तो माँ के ये कहने से बैठ गया, अब सत्संग सुनने लगा तो महाराज रोजाना ही सत्संग माने लग गया, ऊपर मेरे से मिला बात के महाराज सत्संग में हमें बहुत लाभ हुआ, तो लिखी हुई पुस्तक भी वो ले गया कि मैं सत्संग लिखूंगा, अब जब तक चखा नहीं तब तक तो वैसे ही माँ को पहुंचा दिया बस, परंतु जब स्वयं सत्संग करने लगा तो छूटा नहीं, वो स्वयं लग गया। ऐसे बहनों माताओं से भाइयों से कहना है जो कहते हैं सत्संग में क्या पढ़ा है, उनको के पांच दस दिन चलो हमारे साथ चलो सत्संग करो, फिर मन में जाओ मत आओ, पांच सात दस दिन तो चलो कम से कम हमारे कहने से ही, तो भाई हित आने हित पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी अपना हित जानते हैं, तो मनुष्य का अपना हित नहीं चाहते, जब उनको मालूम हो जाए भाई हमारे हित की बात है हमारे लाभ की बात है तो वे छोड़ेंगे ही नहीं, तो ये करने से पता लगा, जिस मिठाई को हम खाते नहीं चखाई नहीं उसका कैसा स्वाद है कैसे बतावें, फल बहुत से होते हैं तरह तरह के, वो फल हमने चखा नहीं तो उसके बाद क्या कहें, उसे मन चलता ही नहीं, और जो देखा है तो उनका मन चलता है। अब यहां बीकानेर में पूर्व की तरफ मतीरे होते हैं, तो मतीरा जिस वक्त नहीं होता जिस समय तो उनके मन में आती है कि तो मतीरा नहीं हुआ, ऐसा मतीरे नहीं होते उन मन में आते ही नहीं, मतलब नहीं हुए, उनका अभाव खटक हुआ ही नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं, चखा ही नहीं, तो वे क्या जाने उस बात को। ऐसे सत्संग के द्वारा, सत्शास्त्रों के द्वारा जो लाभ होता है वो याद भी जाने, जिसके रागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई, सच्ची लगन लगी है वो इस बात को जानता, जिसकी लगन नहीं लगी वो क्या जाने, उसको क्या पता कैसा होता है। इस वास्ते सत्संग में लोगों को जाओ, उनके हित के लिए, अपना स्वार्थ नहीं, अपनी टोली बनाने के लिए नहीं, किसी के कोई बात लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है, जीवन सुधर जाए। ऐसे हमारे सत्संग में आने वाले भाइयों को मैं जानता हूं, कलकत्ते में रहते थे, एक सत्संग से वो लाया करते, एक दो उपचार को ले आते, कई आने लगे, देखे यार नहीं भी आने लगे, पर आने लग गए, वैसे लग गए तो लग ही गए। तो जिसकी समझ में बात आ जाती है भाई हमारा हित है, तो हित कौन नहीं चाहता, सभी अपना कल्याण चाहते ही है, तो सत्संग करने वाले भाई बहन ऐसे उनका साथ विचार चलो। ऐसी बातें कब जचेगी लोगों के, जो आप सत्संग करने वाले हो, आपके आचरण अच्छे होंगे, आपके भाव अच्छे होंगे, सबका हित करोगे, बनोगे, आज्ञा पालन करोगे, सबका सबकी सेवा करोगे, तो आपके आचरण का असर पड़ेगा, और आप नहीं करो सेवा तो भी उसमें असर पड़ेगा कि देखो सत्संग करने वाले ये यदि यूं लड़ाई करते, यूं निंदा करते, ऐसा करते, ऐसा सत्संग करने वाले, तो वे सत्संग का निरादर कराने वाले है, जो अच्छे आचरण नहीं करते वे सत्संग का निरादर करते हैं। तो अपने द्वारा हानि न हो, नुकसान न हो जाए किसी का ही, इस वास्ते सबकी सेवा करो, सबसे मीठा बोलो, प्यार करो, तो सत्संग के द्वारा जीवन का सुधार होता है। वो अपने भाई बहनों को करके देखना चाहिए कि जैसे बातें कहा जाए, चेतावनी कही जाए, अपने भजन ध्यान में जब कीर्तन में लगो, सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, तो कितनी बढ़िया बात है। तो मैं ये कह रहा था डाकू की बात, तो उन्होंने मरते समय कह दिया कि सत्संग मत जाना, तो कहते भी मृत्यु समय में बात कही तो पालन करना है, तो वे चोरी करते डाका डालते थे। तो एक दिन वो जा रहा था, तो बीच में थोड़ा सा मैदान पड़ता था, तो गली वहां करी जाती थी, उसमें सत्संग हो रहा था, रात्रि में कथा हो रही थी, तो उसने देखा भाई कथा हो रही है, तो चलो दूसरी पास दूसरी गली को चले, तो दूसरी गली में जाते लगा भी उसने आंखों में कानों में आंगल लाद दी, खूब कान बंद कर लिए, सुनना नहीं है, सुनना नहीं है, पग में कांटा भाग गया, कांटा लगते ही उस कांटे को निकाला, निकाल दो, सुनना नहीं है, सुनना नहीं है, बात होती वो जरूर सुनता है, छोटे मन लगता है सुनना नहीं है, तो नहीं से बड़ी सब बात नहीं, तो वो कांटा निकाला, इतने में वो कान से अंगुली दूरी करी, तो उस समय मैं बात कर रही थी जिसमें वक्ता ने कहा कि देवता की छाया नहीं होती, जैसे दीपक और सामने खड़े रहे तो हमारी छाया हो जाती है, सूरज के पीछे आएंगे तो छाया पड़ती है, कि तो देवता होते हैं उनकी छाया नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने तेज से शरीर होता है, शरीर भी तेज का, ये भी तेज है, छाया कैसे पड़े, छाया तो मिट्टी का शरीर होता तो पड़ता है, तो देवता की छाया नहीं होती। सुन लिया और मारा नहीं सुनना है, नहीं सुनना है, बात से वो सुनी पक्की हो गई, फिर में अब देवता की छाया नहीं होती, अब याद करना नहीं पड़ा, आप साहब याद हो गया। फिर अपना काम वैसे ही करने लगे तो राजा के यहाँ बड़ी भारी चोरी हुई। अब उस चोरी का विचार किया कि इसका पता लगाना, तो वहम था कि ये चोर है, ये डाकू लोग रहते हैं तो ये चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, तो इनमें से किसी ने चोरी की होगा। तो एक सीआईडी विभाग का गोपिया पुलिस का एक आदमी था, वो एक बड़ा काली देवी, काली देव उनका इष्ट था, डाकू होगा, तो काली देवी बन करके और काला शरीर करके जीप निकाल करके आई है, तूने इतनी इतनी चोरी की, राजाओं का ऐसा ऐसा माल हमारा, हमारी पूजा ही नहीं की, ऐसे कर किया क्रोध। तो सब इकट्ठे हुए, फिर गदवरी काली नाराज हो गई, हमने डाका तो डाला और पूजा नहीं की, तो पूजा करेंगे, कहते माता जी अब करेंगे, आपको पूजन जरूर करेंगे, लाओ भाई पूजन लाओ, पूजन के लाए दीवा लाए, दीवा लेकर के आरती करने लगे, आरती का समय था तो दीवे से छाया पड़ी उनकी, तो वो जो ये देवता नहीं है, जो देवता पर छाया नहीं होती, इसके तो छाया है, तो देवता को नहीं आई है, तब उसको लगे मार लगे कि देवी बनी है, ठगे तो हमारे मारेंगे इनको, मार लेंगे तो भागे वहां से। तो उसे देखा रे, एक दिन अचानक कान में बात पड़ी, उससे भी लाभ हो रही, तो हम तो सब पकड़े जाते और फिर घर गए, देवी कह रही है ऐसा, और देखा तो देवी को मनुष्य देवता है ही नहीं। तो सत्संग किस समय में कौन सी बात कैसे लग जाए और कहाँ वो गुण करेगी इसका पता नहीं है, सुनते रहो तो कभी कोई बात लगेगी। जैसे मोटर चलाते हैं तो सामने चाबी लगा करके उसको घुमाते हैं ना, वो ऐसे अब वो एक दो आंटे में हो जाए, तीन में 20 आंटे में वो पंखा नहीं चला और 21वां कभी खट चल पड़ा, तो वो इसी में ही चलेगा, आशा लगा दे जाओ, ऐसे सत्संग करते करते फट लग जाएगा कहीं, तो एकदम प्रकाश हो जाए वो ये बात वो आज जली हुई ऐसी, अरे आज नहीं है, थोड़े थोड़े संस्कार पढ़ते पढ़ते आज साफ आ गई, इस बात से पता लगता आज इसको पता लगा। तो वो संस्कार पढ़ते हैं और उसके संस्कार पढ़ने का कभी उद्बुद्ध हो जाता है तो विशेष लाभ होता है, तो ये विशेष लाभ तभी होगा उसमें लगे रहे। इस बात से हरिशय लागे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम विषय लगे रहो भाई लगे रहो, पढ़ाई बढ़ जाता है, पक जाता है, ध्यान हो जाता है, ऐसे सत्संग में लगे रहते हैं उनमें महाराज विलक्षणता आ जाती है, वे ज्यादा चेष्टा भी नहीं करते, वो फल क्या चेष्टा करता है, फल का स्वभाव है वो तो खींचता ही है, परंतु कोई ऊपर चेष्टा न करे पर भी पक जाता है। ऐसे सत्संग में रहते रहते मनुष्य परिपक्व हो जाते हैं। एक बात मैंने सुनी, एक कोई बाहरी तक बहन थी, किसी ने पूछा डोंगरी जी से पूछा कि महाराज आनंद में सुख में क्या फर्क है, तो बोले ये सत्संग किया हुआ है, ये सत्संग की बात है, तब डोंगरी जी बोले, नहीं तो सत्संग नहीं करे वो क्या समझे आनंद में सुख में क्या फर्क है, अरे सुख का जोड़ा तो दुख होता है, आनंद का जोड़ा दुख नहीं होता, वो आनंद ही होता है, दुख है ही नहीं, तो ऐसा बात पूछते सच बोले ये सत्संग किया हुआ है, ये सत्संग किया है, तो आदमी में फर्क पड़ता है, सत्संग करने से ऊपर से फर्क नहीं दिखता, भीतर फर्क पड़ता है। इस बार गोस्वामी ने कहा मज्जन फल देखी यत्र काला, सत्संग रूपी प्रयाग में स्नान करने से अचतु फल चारी फल अचत अनुसार समाज प्रयाग, प्रयाग में स्नान करने से अगली जन्म में उद्धार होगा, परंतु इस सरोवर में स्नान करने में मज्जन फल देखिए तत्काल तत्काल फल होता है, काक हो ही पिक बक उमर आला, काक हो ही पिक का हंस हो ही पिक कह लेते नहीं, काक हो ही बक मतलब रंग नहीं बदलता है, ढंग बदल जाता है, वाणी कोयल की और होती है, कौवे की और होती है, और बगला होता है वो हंस हो जाता है, बगला को मछलियां खाता है, हंस मूर्ति टूटता है। विवेक और व्यवहार अंश का भी बदल दिया विवेक के विषय में, और काक वो एक प्रकार दिया बोली के विषय में। तो वो व्यवहार ऐसा विलक्षण होता है उनका, और भाषण होता है विवेक विषय हो जाता है। तो सत्संग करने वाले भाई बहनों में विवेक जागृत होता है, सत्य असत क्या है, नित्य अनित्य क्या है, सार असार क्या है, इन बातों का ज्ञान होता है, और ज्ञान के अनुसार आचरण से होते हैं। यदि मनसा अध्याय थी तद्वाचा बदलती, यद वाचा बदलती तो देव कर्मणा करोती। मन में जितना ध्यान होता है बार बार, तो वैसे ही कर्म करने लगता है, वैसा बोलने लगता है, ऐसा बोलने लगता है, काम करने लगता है। इस तरह से सत्संग का असर भाई बहनों पर होता है। तो अपने करो तो बात मूल ठीक, वो करे से क्या असर होता है कि ये असर होता है परमात्मा को तो की प्राप्ति करना है। कई भाई बहन ऐसे मिले हैं वो कहते हैं हमें पता ही नहीं था सत्संग किए बिना वो तो खाना कमाना, इसमें कोई तत्व की प्राप्ति, मुक्ति की, कल्याण की प्राप्ति, भगवान के दर्शन, भगवान का प्रेम आदि होते हमारे ख्याल ही नहीं था। ये सत्संग से स्मरण को खाया लगा, राम मया सतगुण गया, साधु संग जब होए तब प्राणी जाने को सो रहे हो विषय होए, वो विषय में पगा पड़ा रहता है, उसको पता ही नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मनुष्य से क्या लाभ है, इन बात का ज्ञान ही नहीं। सामने ये बात आती ही नहीं, बेचारे क्या करें, उनका कोई दोष है, दोष नहीं है, सामने बात नहीं आई, कैसे समझे। बालकों की बातें मैंने सुनी, जो हिंदू बालक है वो स्कूलों में पढ़ाते हैं, ईसाइयों के स्कूलों में बड़े आदमी से मेरे बात हुई तो हिंदी नहीं समझते, संस्कृत वो अंग्रेजी बोलते हैं, हिंदी समझते नहीं, मेरा हिंदी बात की हिंदी में बता रही है, क्योंकि वो उसे पढ़े हैं ईसाइयों के स्कूल में। ईसाइयों के स्कूल में हिंदी बोलने नहीं देते, बोलते जुर्माना करते हैं उस पर, तो अंग्रेजी सिखाते। तो हिंदुस्तान में रहते हुए बालक घर में ही ईसाई बन गए, अपने घर में रहते रहते चूबे संस्कार पड़ गए, तो बालकों पर बड़ा असर पड़ता है। तो अपने बालकों को सत्संग कराओ, हनुमान चालीसा पढ़ाओ, कम से कम बालकों में हनुमान चालीसा याद होता है। मेरे को याद है दोपहर के समय इन चौदह चालीसा गए तो वहां मशान देखा, ठीकरा पड़ा है, चिंचड़े पड़े हैं, देखा और ये तो मशान आ गया तो डर लगा, छोटे साइज पर डर लगा, तो भूत पिशाच दीजिए तो भाई नहीं आई याद, यही आई जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव नाई, जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो, पढ़ा भाई दूर हो गया, जी जी भाई हनुमान थोड़े दूर हो जाए भाई। आनंद साइज वो चौपाई कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना तो बहुत याद आई थी, तो हनुमान चालीसा याद था मेरे बचपन में, याद बहुतों को याद, आपके घरों में सजा छोड़ियों को हनुमान चालीसा बहुत याद है। आजकल कुछ स्कूल ऐसी होगी जो पता नहीं याद की, हमारे जैसी बात थी सब अच्छे हनुमान चालीसा याद होता ही, ऐसी क्या बात है, वो सुनते ही थे, कहते ही थे, पढ़ते ही थे। तो ऐसे संस्कार रहिए बड़े काम करते हैं। अब मेरे को किसी ने सुनाया थोड़ी, कहा थोड़ी, शिक्षा थोड़ी दी कि डर लगे हनुमान जी को याद करना, संस्कार थे भी हनुमान जी महाराज कृपा करते हैं तो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो उठे गिलाई जय 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 हनुमान गोसाई, भय दूर हो गया, ठीक हो गया, हनुमान जी ऐसा करते किस बात का भय। ऐसे आप किस समय में कौन सी बात कब काम आ जाए इसका पता नहीं है। सत्संग से संग्रह होता है, बीच में संग्रह होता है, वो संग्रह के बाद किस समय में कौन बात काम में आवे आती है, लाभ होता है। इस बात सत्संग संत समागम करिए भाई, जान अजान लगे पार्श के लोह पदर्थ कंचन हो जाए। संत समागम करिए भाई, नाना विध बनराज कही दे, भिन्न भिन्न सब नाम धराई, जाके सूर्य लगे चंदन की, चंदन होते बार लाई। संत समागम करिए भाई, जहाज स्वरूप बनो सत्संगत, या मैं बैठो सब मिल आई, और उपाय नहीं तिरने का, सुंदर कार्य राम दुआई। राम दुआई, और उपाय ऐसा सरल नहीं है। सत्संग के द्वारा बड़ी सरलता से बोध हो जाता है, बहुत बातों का ज्ञान सत्संग के सुनने से हो जाता है, व्यवहार का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा का ज्ञान होता है। ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, अष्टांग योग क्या है, उद्धार कैसे होता है, ऐसी ऐसी बातें सत्संग सुनते सुनते ऐसी बढ़िया बातें हो जाती है। अच्छे अच्छे शास्त्री पंडित भी जिन बातों को नहीं समझ सकते, वे सत्संग करने वाले मिल अक्षरों का ज्ञान नहीं, वे बात कह देते हैं, क्यों वो सार चीज मिलती है तो वो ग्रहण हो जाती है। सत्संग करने पर वो ज्ञान होती है, उसका स्वभाव सुधरता है। तो परमात्मा की प्राप्ति सुगम है, किसके लिए, कि जो चाहते हैं। अब चाहते ही नहीं सुगम गठन क्या है, चाहते ही नहीं सुगम गठन क्या है। मैं तो उदाहरण देता हूं कि हमारे को 50 वर्ष से ऊपर हो गए, 60 वर्ष हो गए, इसी के चाहते हैं, पर हम नीलगंज गए नहीं, तो नीलगंज कोई कठिन जाता है क्या, कोई बहुत दूर है क्या, सर साथ नहीं दोता था। अब मेरे मन में नहीं आई, गए उद्योग नहीं गया, 50-60 वर्षों रहे थे, नीलगंज भी नहीं गए, तो नीलगंज बड़ा कठिन है, जो नहीं जा सकते। अब मन जाने की है ही नहीं, वो बताया जू तो बात ये हो रही है, अपने मन में ही नहीं है। अब सुगम से सुगम कह दो गति जो सुगम मिल जाता, सही बात है। मार्ग प्रयात मणिलाभ मे लभेद मोक्ष धन्य, श्री शंकराचार्य महाराज ने लिखा है सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह। यदि मोक्ष मुमुक्षा कैसी है कि मार्ग प्रयात मार्ग में बढ़ते बढ़ते मणि मिल जाए तो अपने मिल जाएंगे, तो सत्संग हो रहा है, अपनी मुक्ति ले लो भाई, मिल जाएगी मुक्ति मिल जाएगी हमने, तो अब होगी जैसे नहीं। अब इच्छा करे, उनकी चेष्टा करे, उन्हें दाल सपोर्ट जगावे, ऐसे ही रहना चाहते हैं। ऐसे भी कोई कोई मौका आता है, ये तत्काल भी हो जाता है, पर वो सुनने वाले सुनाने वाले वास्तव में पात्र हो और वो उत्कंठा हो जाए, सन्मुख हो जाए, तो सन्मुख हो जीव हो जब ही जन्म कोट यज्ञा से तब ही ऐसा भी हो जाता है। इस बार सत्संग में लग रहो, कभी न कभी ऐसा मौका भी आ जाए, सच काम बन जाए अपना, ऐसा हो सकता है। नारायण नारायण नारायण।